बाबा के इस बेहद शांतिवन में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाप दादा से मिलन की अनमोल घड़ियों को सभी बहुत ही दिल से चाहते कि कब बाप दादा से मिलन मनाएं, और वो दिन तो अब नजदीक आ चुका है। योग का गहन अनुभव हम सभी करते ही हैं, लेकिन साथ में उस योग की कितनी महिमा है वो भी हम आज विशेष क्लास में सुनेंगे। हम सभी के बीच में आदरणीय नेहा बहन जी उपस्थित है। हम चाहते हैं कि आज वो हमें विशेष योग के गहन अनुभूति का अनुभव कराएं। आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, पिछले 30 सालों से आप अपने समर्पित जीवन इस यज्ञ के साथ गामदेवी सेवा केंद्र पर उपस्थित रहे, सेवाएं दे रहे हैं। गामदेवी जो कि आप सबको पता ही होगा कि जहां बड़ी दादी जी प्रकाशमणि दादी जी सेवा के निमित्त थे, और उसके बाद शील दादी जी, और आज हम देखते हैं कि उषाबेन रमेश भाई जी के बाद आप गामदेवी सब जोन को संभाल रहे हैं निमित्त बन करके। तो आज हम नेहा बहन जी से विशेष योग की गहन अनुभूतियां अपने जीवन के साथ कैसे जोड़ दें, अपने अनुभव से ही वो हमें लाभान्वित करेंगे। आदरणीय नेहा बहन जी,
ओम शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति। इस बेहद के ड्रामा के अंदर सबसे सुंदर काल वो है हमारा संगम युग, और इस संगम युग के अंदर भी सबसे श्रेष्ठ सुवर्ण काल हम किसको कहेंगे। कहा जाता है कि आदि सो अंत, उसका भी अपना गायन है। हमारे इस यज्ञ के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ काल रहा आदि काल, जबकि हमारे यज्ञ पिता और यज्ञ माता के साथ साथ पूरे यज्ञ की नींव डली गई, और उसी नींव के आधार पर आज हमारा ये बेहद का यज्ञ इतनी विशाल रूप से फैला हुआ है। लेकिन जितना आदि काल महत्वपूर्ण रहा, उतना ही महत्वपूर्ण है कौन सा काल, अंत का काल। और वही अंत काल के समीप हम सब ब्राह्मण बच्चे पहुंच चुके हैं। 2018 नए साल की पूर्व संध्या पर हम सब यहां पर मिले हैं। आप हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा के इस बेहद घर में हम नए साल की शुरुआत और पुराने साल की समाप्ति करेंगे। तो समाप्ति समारोह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नए साल की शुरुआत महत्वपूर्ण है। तो वो समाप्ति समारोह के अंदर हमारे बीच में स्वयं भगवान होंगे। अगर हम अपने भाग्य के बारे में कभी एकांत में बैठ करके सोचे कि क्या कभी ये भी सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा जिसका गायन आज तक शास्त्रों में हम सुनते आए प्रभु की लीला, और वो लीला में भी थोड़ा थोड़ा समय भगवान साथ में रहते थे, और वो भी सबसे गायन योग्य लीला है कि गोपियों के साथ साथ श्री कृष्ण रहता था। लेकिन उनसे भी कई गुना महत्वपूर्ण जो लीलाएं संगम पर चल रही है, और वो लीला का प्रत्यक्ष अनुभव बाबा का एक एक बच्चा संगम पर कर रहा है, और वो अनुभव कौन सा है? भगवान को सदा हर कर्म में अपने साथ अनुभव करना। कितने भाग्यशाली हैं हम? वो भाग्यशाली बच्चे हैं जो बच्चे चाहे तो हर पल प्रभु को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि बाबा ने खुली ऑफर दी है हम बच्चों को कि बच्चे मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही अभी पूरा समय क्या कहेंगे हाजरा हजूर हूं। तो क्या भगवान के इस रूप को, या तो हम कहेंगे कि बाबा के इस स्वरूप का और साथ का हम यथार्थ रीति से सचमुच अनुभव कर रहे हैं, या भगवान के साथ का हम पूरा पूरा फायदा ले रहे हैं? हम सब बाबा के बच्चे रोज रोज मुरली में सुनते हैं कि बच्चे बस दिल से कहो बाबा और बाबा तुम्हारे पास है। तभी तो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे पूरे कल्प के अंदर सिर्फ यही समय है जबकि स्वयं बाप तुम्हारी सर्व जिम्मेवारियों को निभाने के लिए उठाने के लिए हाजिर है। कहा है ना? अब हम अपने आप से पूछें, मैंने कितनी जिम्मेवारियां बाबा को दे दी है? दूसरा, बाबा बार बार कहते बच्चे यही समय है जबकि पूरे कल्प की तकदीर की लकीर आप बच्चे जैसा चाहे वैसा खींच सकते हैं, क्योंकि तकदीर बनाने की कलम मैंने आपके हाथ में दी है। क्या मैं अपनी तकदीर की लकीर को उतना ही अच्छी तरह से खींच रही हूं? अपने आप से पूछना है। बाबा ने कहा है बच्चे हर कर्म में मुझे साथ रखो, तो तुम्हारा एक एक कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा, और यही श्रेष्ठ कर्म के सामने हमारे अनेक जन्मों के अनेक विकर्म धीरे धीरे सेटल होते जाएंगे। 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है ना? तो एक है योग बल जिससे मुझे विकर्मों को विनाश करना है, और दूसरा है सामने श्रेष्ठ कर्मों का बल। तो क्या ऐसे मेरे कर्म हो रहे हैं? क्योंकि एक बहुत भारी हिसाब बाबा बार बार हम बच्चों को मुरली में रिवाइज कराते हैं, याद दिलाते हैं, कि बच्चे संगम युग इतना महत्वपूर्ण युग है, एक श्रेष्ठ कर्म करो और उसका 100 गुना फल प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उनके सामने अगर कोई एक गलत कर्म किया तो उनका भी 100 गुना घाटा पड़ेगा। तो फायदे और घाटे का वंडरफुल हिसाब है। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा बस ये हिसाब को यथार्थ रीति से समझ ले तो कर्मों पर पूरा पूरा अटेंशन रहेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को पक्का व्यापारी बनाना चाहते हैं। और कई बार हम बच्चे मुरलियों में ये सुनते हैं, कोई विरला व्यापारी भगवान से व्यापार कर सकता है, सुना है ना? तो क्या मैं वो विरला व्यापारी हूं जो ऐसा सौदा भगवान से करूं कि एक का अनेक गुना मुझे मिलता रहे? तो इसके लिए मुझे अपने कर्मों पर कितना ना अटेंशन रखना पड़े। तब बाबा ने कहा, बच्चे हर कर्म मेरी याद में करो। तो क्या होगा? वो कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। आप सभी का भी अनुभव होगा कि जो कर्म में बाबा की याद में करती होंगी या हम करते होंगे, अगर कुछ गलत भी हम करने जाते होंगे ना, तो बाबा तुरंत रोक देगा, है ना अनुभव? तुरंत ब्रेक लग जाएगी। तो एक तो मुझे चाहिए कि हर कर्म में मैं बाप को अपना साथी बना लूं, और दूसरी बात रही वर्तमान समय की बात। चलो अब तक हम बाबा के बच्चे बनकर जिस प्रकार से मैंने अपने ब्राह्मण जीवन को व्यतीत किया, आप में से कई भाई बहने होंगे जो बहुत पुराने भी होंगे, कई भाई बहने होंगे जो नए नए भी होंगे। हो सकता है कि अब तक कुछ ऊपर नीचे होता भी रहा हो, और हरेक का होता है। लेकिन अब हम वो समय पर आकर पहुंच गए हैं जिस समय के लिए हम ये कह सकते हैं कि कभी भी टू लेट का बोर्ड लग सकता है। लग रहा है आप सभी को? टू लेट माना क्या? बाबा ने कहा है, बच्चे एक समय आएगा टू लेट, माना बस अब हम कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि विनाश शुरू हो जाएगा, वो प्रक्रिया तो बहुत लंबा समय चलेगी। लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए टू लेट वो स्थिति है जिसमें हम चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। परिस्थितियां इतनी होगी, बातें इतनी होंगी कि करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ बाबा का स्वरूप ऑफिशियल स्वरूप हो जाएगा। अभी बाबा हमारे साथ साथी हैं, और फिर क्या बन जाएंगे? साक्षी। जैसे हम स्कूल में देखते हैं कि टीचर तो वही होता है जो पूरा साल स्टूडेंट को पढ़ाता है, मदद करता है, सब कुछ देता है, लेकिन वही टीचर जब एग्जाम के समय में सामने होगा तो उनका स्वरूप बदल जाता है। उस समय वही स्टूडेंट्स होंगे, वही टीचर है, लेकिन टीचर स्टूडेंट को कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं बताएगा, होता है ना? बस वही स्थिति बाबा की होगी। अब बाबा हमें हर पल कहते, बच्चे पुरुषार्थ करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हम बच्चों ने एक कदम उठाया और 1000 कदम जितनी मदद बाबा करते हैं करेंगे। लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा तो फिर बाबा सामने होंगे, लेकिन स्वरूप चेंज हो जाएगा। और वो समय को अभी 3-4 दिन पहले की साकार मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे वो समय होगा प्रत्यक्षता का और साथ में पश्चाताप का समय होगा। तो एक पश्चाताप होगा दुनिया वालों का, जो कहेंगे अहो प्रभु आप आ गए हमें पता भी नहीं चला, और दूसरा पश्चाताप होगा वो ब्राह्मण आत्माओं का जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया होगा, और वो पश्चाताप बड़ा कड़ा होगा। इसलिए बाबा बार बार चाहते हैं कि मेरे बच्चे वो पश्चाताप के काल से नहीं गुजरे। तो अब हम सभी को क्या करना है? तभी पहले मैंने कहा कि ये समय भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है। अभी भी बाबा कहते बच्चे आप थोड़ा मेहनत करो, एक कदम आगे उठाओ हिम्मत का, मैं 1000 कदम जितनी आपको मदद करूंगा। तो नए साल की शुरुआत में अब हम यहां से कुछ अपना ऐसा प्लान बना के जाए जो बाबा ने एक बार अभी अभी अव्यक्त मुरली में कहा था, कोई भी देखे तो कहे कि ये तो मधुबन से बन के आए हैं, सिर्फ प्लान बनाकर नहीं आए हैं लेकिन बन करके आए हैं। तो ऐसा कौन सा हम अपना प्लान बनाए कि हम जल्दी से जल्दी बाप समान बनने की मंजिल के नजदीक चले जाए। आजकल का समय कौन सा चल रहा है दुनिया के हिसाब से देखो तो लोगों को सब कुछ फास्ट चाहिए, एडवांस चाहिए, फास्ट चाहिए, जल्दी जल्दी। इसलिए साइंस भी बहुत एडवांस हो रहा है, रिफाइन हो रहा है, चीजें भी डबल रिफाइन हो रही है, और बड़े स्वरूप से अभी माइक्रो स्वरूप में चीजें भी बन रही है। तो हमें भी अपनी स्थिति को बहुत सूक्ष्म में, माइक्रो में लेके जाना पड़ेगा। हमें अपने विचारों को सिर्फ रिफाइन नहीं लेकिन डबल रिफाइन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। कम समय में जल्दी से जल्दी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है? कोई मंजिल पर हमें जल्दी पहुंचना होता है तो पहले हम सोचते भाई शॉर्टकट कौन कौन से हैं? बताओ। शॉर्टकट लेंगे तो हम मंजिल पर जल्दी पहुंच पाएंगे। हमारे इस ईश्वरीय जीवन की मंजिल के भी बाबा ने कुछ एक शॉर्टकट्स बताए हैं जो बहुत 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 पावरफुल है। तो अब हम पूरा अटेंशन देंगे वो शॉर्टकट रास्ते पर ताकि जल्दी से जल्दी हम प्राप्तियां कर सके। तो सबसे पहले मुझे साकार बाबा का एक उदाहरण याद आता है, आज सुबह ही हमने वो सुना चक्रधारी बेन के द्वारा, कि एक बार साकार बाबा को जब आप मिल रहे थे तो बाबा ने बच्चों से एक सवाल पूछा कि बच्चे कौन कौन से चक्र है, तो बताया कि बाबा स्वदर्शन चक्र भी है, फिर 4 युगों का चक्र भी है। तो बाबा ने कहा बाप एक ऐसा चक्र आपको बताता है कि अगर उस चक्र को आप धारण कर लो तो तुम चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। और वो चक्र कौन सा बाबा ने बताया जो हमें बहुत बहुत टच हुआ? साकार बाबा ने कहा जो बच्चे सवेरे सवेरे 2-2.5 बजे उठ करके पूरे सृष्टि के गोले के चक्र को सकास देते हैं, लाइट और माइट देते हैं, वो बच्चे चक्रधारी राजा जरूर बनेंगे। क्योंकि फिर साकार बाबा ने और आगे स्पष्ट कहा, वो समय है जब पूरी आत्माओं को एक साथ आप ग्लोब पे इमर्ज करके बाबा से लाइट और माइट लेके अगर आप उसका दान करेंगे तो इतना भाग्य आप बच्चों का जमा होगा, पुण्य जमा होगा कि वो पुण्य आपको चक्रवर्ती राजा अवश्य बना देंगे। तो पहला शॉर्टकट रास्ता कौन सा हुआ? सकास देना, मनसा सेवा, जो हमारे इस यूनिवर्सिटी का सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है और ऐसा विषय है जो बहुत जल्दी से आत्मा के पुण्य कर्मों को जमा कर देता है। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा कि जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, दो तीन आत्माओं को भी हम ज्ञान सुनाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। कभी कभी थोड़े क्राउड में हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं तो तुरंत वो आत्माओं की दुआएं हमें मिलती है और हमारी आत्मा में शक्ति जमा हो जाती है। कभी हम थोड़ी यज्ञ सेवा करते हैं तो उनका भी हमें पुण्य मिलता है। तो जब हम मनसा सेवा करते हैं, सकास देते हैं, तब हम डायरेक्ट बाबा से जुड़ जाते हैं और वो निराकारी स्थिति में, वो आकारी स्थिति में हम अपने सामने लाखों आत्माओं को इमर्ज करते हैं और उसमें भी हमने पूरे ग्लोब को इमर्ज किया तो सारी सृष्टि की आत्माओं को मैंने इमर्ज किया। और फिर जब हम उसको सुख शांति की लाइट और माइट देते हैं, वो आत्माओं तक पहुंचती है तो उन सारी आत्माओं का रिटर्न में हमें जो दुआओं के रूप में मिलता है पुण्य, वो हमारी आत्मा को कहां से कहां पहुंचा देता है। इसलिए कहा सबसे पावरफुल विधि है स्वयं को आगे बढ़ाने की, वो है मनसा द्वारा सकास देना। अब हम स्वयं को पूछे, सारे दिन में कितना समय में आत्मा ये सकाश देने का कार्य कर सकती हूं? एक तो अमृत वेला बाबा ने दिया है, अमृत वेले अवश्य हमें सकाश देना है, लेकिन उनके साथ साथ सारे दिन में भी बीच बीच में भल 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके भी अगर हम ये दान करेंगे तो हम पाएंगे स्थिति में बहुत ही जल्दी से सुधार आता जाएगा। कभी कभी आपको लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत में कुछ इतना मजा नहीं है, तो आप इसका प्रयोग करो। पूरे सृष्टि के ग्लोब में उन आत्माओं को इमर्ज करो, बाबा के सामने संकल्प रखो, बाबा इस संसार में जितनी भी बीमार रोगी अस्वस्थ आत्मा है, सारी आत्माओं को बस शक्ति मिले, फिर से सुंदर स्वास्थ्य मिल जाए और उनके स्वास्थ्य को आप सकाश दो, तो आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य और आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक होती जाएगी। तो जो जो मुझे जरूरत है उनका अगर हम दान करते जाएंगे तो ये भी एक बहुत सुंदर विधि है स्वयं की आत्मा को शक्तिशाली बनाना। तो नए साल में हम सब मिलकर के एक तो ये संकल्प लेंगे कि मुझे सारे दिन में दुखी अशांत आत्माओं को साकार जरूर देना है। बाबा साकार मुरली में तो बार बार कहते, बच्चे आप तो पूर्वज हो ना, पूर्वज माना सारे विश्व की आत्माओं के पालनहार, तो सारे विश्व की आत्माओं के लिए मुझे रोज समय निकालना ही है। साकार बाबा भी कहा करते थे, बाबा बार बार रात को संसार को सकास देते रहते थे। कई बार मुरली में भी बाबा कहते, बच्चे आपको क्या दुखी और अशांत आत्माओं की आवाज सुनने में नहीं आती है? बाबा को तो आती है, तो मुझे वो स्थिति तक पहुंचना है कि जिसमें हमें वो आत्माओं की आवाज भी सुनने में आए। दूसरा कारण, सकाश देने की क्यों जरूरत है? साकार बाबा ने ये बात भी स्पष्ट की कि जब अंतिम समय आएगा तब समूह मृत्यु भी बहुत होंगे, एक साथ अनेकानेक आत्माएं अपने शरीर को छोड़ेगी, ऊपर का घर का दरवाजा बंद होगा, तो सारी आत्माएं भटकेगी दुखी और अशांत होकर, और वो आत्माएं किसी को भी सुख और शांति से चैन से रहने नहीं देगी, जिसको बाबा कई बार अव्यक्त मुरलियों में भी कहते, भटकती आत्माओं का प्रकोप। लेकिन अगर मैंने लंबे समय से सारी आत्माओं को लाइट और माइट देने का अभ्यास किया होगा, सुख और शांति का दान दिया होगा, तो वो अशांत आत्माएं भी मुझ आत्मा को अशांत नहीं करेगी, दुख नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हमने उनको शांति का दान दिया हुआ है। तो ये बात भी हम सभी को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, बाप समान स्थिति तक पहुंचने का दूसरा शॉर्टकट रास्ता है कौन सा, अभी आप बताएंगे। जिसे आत्मा के भाग्य को हम जल्दी से जल्दी जमा कर सके, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, बच्चे दुआ देना और दुआ लेना, ये सबसे पावरफुल स्थिति है, या ये सबसे बड़ी पावरफुल एक सेवा भी है। दुआओं का विमान इतना पावरफुल है, बाबा ने उसमें दो प्रकार की दुआएं बताई, जिसमें कहा एक है आत्माओं की दुआ लेना। वैसे भी हम दुनिया में कहते हैं ना कि भी दुआएं जमा करो, कभी कभी कुछ किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है, वो व्यक्ति बच जाता है, तो हम कहते भाई तुमको किसी की दुआ लग गई, आप बच गए, इसलिए हम बड़ों की भी हमेशा दुआएं लेते हैं, क्योंकि दुआ में वो बल है जो बल आत्मा को शक्तिशाली बनाता है और आगे बढ़ा देता है बहुत तीव्र गति से। तो एक तो है कि हम आपस में एक दूसरे की दुआएं लें, और कोई पुरुषार्थ बल हम न भी कर सके, ज्यादा सेवा भी बल हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम दुआएं कमाना शुरू करें, और दुआएं हम चलते फिरते कर्म करते भी जमा कर सकते हैं। हर आत्मा के साथ हम इतना प्यार भरा व्यवहार करें, भले वो छोटी से छोटी व्यक्ति क्यों न हो, हम इतना प्यार से उनके साथ बोले व्यवहार करें कि वो आत्मा के दिल से हमारे प्रति दुआ निकले कि सचमुच इसने कितना अच्छा बोला, मेरे साथ कितनी अच्छी बात की, या मुझे कितनी अच्छी बातें सुनाया जिससे मेरे दिल को सुकून मिला। तो दुआएं जमा कर सकते हैं हम अपनी वाणी के द्वारा, दूसरा हम दुआएं जमा करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अब अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चाल और चलन के द्वारा। और जब मुझे दुआएं जमा करनी है तो अटेंशन रखना पड़ेगा, सामने वाली आत्मा चाहे कैसा भी व्यवहार करे लेकिन मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है। वो मुझे भल बद्दुआ भी दे लेकिन मुझे उसे अच्छे व्यवहार की दुआएं देनी है। और दूसरी दुआ हमें जमा करनी है वो है परमात्मा दुआ। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है कि बच्चे परमात्मा दुआ एक ऐसा रॉकेट है जो एक सेकंड में आत्मा को कहां से कहां पहुंचा लेता है। जब आत्माओं की दुआ इतना कमाल कर सकती है तो परमात्मा दुआ क्या नहीं कर सकती है। तो परमात्मा दुआ किन आत्माओं को मिलेगी? परमात्मा दुआ माना बाबा की दुआ उन आत्माओं को मिलेगी जो आत्माएं बाबा की श्रीमत पर पूरी तरह से चलती होगी। जैसे कोई बच्चा माँ बाप की आज्ञा पर चलता है तो माँ बाप की दुआ मिलती है ना। बच्चे के कहने से पहले ही माँ बाप उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। वैसे छोटी सी छोटी श्रीमत जो बाबा ने हम आत्माओं के प्रति दी है, जितना मैं आत्मा बाबा की श्रीमत का पालन करूंगी, भल कोई देखता है या नहीं देखता है, मैं आज अमृत वेले उठी या नहीं उठी, कोई देखे या नहीं देखे, लेकिन बाबा तो देखता है ना। मैंने ध्यान से बाबा की मुरली सुना, पढ़ा, उस पर मनन चिंतन किया तो ये बाबा की आज्ञा का मैंने पालन किया और बाबा की दुआ मुझे मिल गई। ऐसे जमा होती है दुआएं। किसी आत्मा के साथ मैं रास्ते में जा रही थी और उस आत्मा ने मुझे कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने क्या किया? क्या मैंने भी उसको दो सुना दिया या मैंने शांति से सहन कर लिया? अगर मैंने शांति से सहन किया उसके बारे में, फिर भी मैंने अच्छा सोचा और किसी को सुनाया नहीं, उस आत्मा की बुराई नहीं की, मुझे बाबा की दुआ मिल जाएगी कि बच्चे ने बाप की आज्ञा का पालन किया। यह है दुआ कमाल। अगर मैंने सहन कर लिया, उस आत्मा ने मुझे उल्टा सुल्टा बोला लेकिन फिर मैंने जाकर के दो तीन को सुनाया कि देखा इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, मैंने सहन कर लिया, तो क्या दुआ मिलेगी बाबा की? मैंने सहन किया लेकिन साथ में मैंने पर चिंतन भी कर लिया, तो वहां भी माइनस था, यहां भी माइनस, परमात्मा दुआ नहीं मिली। तभी बाबा कहते अच्छे कर्म करो और उसको वहीं पे समा दो। क्यों? बाबा ने आठों ही शक्ति किया है दिया है ना, कि बच्चे सहन करना है, ये तो ब्राह्मणों की एक ताकत है सहन करना, लेकिन क्या मैंने सहन करके उसको समाया? समाया भी कैसे? शांत मन से, श्रेष्ठ चिंतन के साथ समाया, तो वो मेरी शक्ति भी बनेगी और मुझे बाबा की दुआ भी मिलेगी। वैसे हर कर्म में अगर मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म करूं, मैंने बाबा की बहुत अच्छी सेवा की लेकिन सेवा करके मैंने उनको फैलाया नहीं, समा दिया, तो परमात्मा दुआ मिलेगी। सेवा करके मैंने जाकर दो चार को बता दिया, देखा मैंने ऐसे सेवा की, ऐसे सेवा की, तो वहां पर भी क्या आ गया? देह का भान आ गया, तो वहां परमात्मा दुआएं नहीं मिलेगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर मैंने बाबा की श्रीमत के अनुसार किया तो वहां मुझे परमात्मा दुआएं मिलेगी, और ये परमात्मा दुआ मेरी स्थिति को बहुत बहुत ज्यादा जल्दी से मंजिल के नजदीक लेके जाएंगी। और बाबा के ज्यादा से ज्यादा लंबा समय तक मुझ आत्मा को अगर साथ रहने का अनुभव करना है तो बाबा की इन श्रीमत पर मुझे बहुत ही गहराई से चिंतन करके उस पर चलना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें होती है, जैसे बाबा कई बार कहते, बच्चे अगर आपको योगी बनना है तो न व्यर्थ सुनना है, न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ सोचना है ना। श्रीमद हम बार बार सुनते हैं, कहां तक मैं उन पर अटेंशन रखती हूं। व्यर्थ देखना माना क्या? ब्राह्मणों के लिए व्यर्थ देखना बहुत सूक्ष्म रीति से हमें अभी चेक करना है। नेगेटिव या तो दुनियावी बातें या दुनियावी ऐसी चीजें जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध है वो तो देखना ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने किसी को देह के रूप में भी देखा तो ये भी बाबा की श्रीमत के विरुद्ध है। तो श्रीमत क्या कहती है? आत्मा को ही देखो, आत्मा को देखो और आत्मा के साथ साथ उस आत्मा के गुणों को देखो। न व्यर्थ सुनना, कई सारी व्यर्थ बातें हम सुन लेते हैं, कभी कभी सुनाने वाले आ भी जाते हैं, सुनना पड़ता है, लेकिन जितना मैंने रुचि से सुना उतना ही मन उसके ऊपर चिंतन करेगा। इसलिए उन बातों से भी हमें अपने आप को बचाना है, और अगर बचा नहीं सकते हैं, मुझे सुनना ही पड़ता है, तो बाबा की याद में ऐसे डिटेच होकर के सुनो कि वो बातें आई और जैसे दूसरे कान से निकल गई। तो न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ सुनना है, और तीसरा न व्यर्थ बोलना है। मुझे ऐसे लगता है कि बोल पर हम ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सहज रीति से हम बोल को ले लेते हैं। कभी कभी जो आया सो हमने बोल लिया, कभी कभी इतना ज्यादा हम बोलते, इतना ज्यादा बोलते, क्योंकि भक्ति मार्ग की तरह बाबा ने हमारे लिए कोई कड़े नियम तो नहीं बनाए हैं कि बच्चे मौन में ही रहना है। हाँ, यज्ञ की शुरुआत में तो बाबा ने बच्चों को मौन में बहुत सालों तक रखा था, वही ताकत अभी तक हम दादियों में देख रहे हैं, क्योंकि हम व्यवहार में है, ग्रस्त में है, तो हम लंबे काल का मौन तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ हम बोल पर अटेंशन तो जरूर रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। जहां हमें 10 वाक्य बोलने हैं वहां हम 3 या 4 वाक्य से भी अपना काम कर सकते हैं ना। और अगर हमने अपने बोल को बहुत मीठा बनाया तो मुझे लगता है जो 10 वाक्यों में काम नहीं होगा वो 2 सेंटेंस में भी हो जाएगा, 2 वाक्य में भी लोग मान जाएंगे। कम बोलना है, क्योंकि बोल में भी हमारी ताकत बहुत जाती है। आप में से कई भाई बहनों ने मौन रखा होगा, रखते भी होंगे, कोई 1 दिन का, कोई 2 दिन का, कोई आधा दिन का, तो अनुभव होगा ना। जिस दिन हम मौन का अभ्यास करेंगे उस दिन हम स्वयं को इतना शक्तिशाली अनुभव करेंगे, करते हैं ना। तो आप सोचो 1 दिन के मौन में भी आत्मा में इतनी ताकत भर जाती है, तो अगर हम सदा काल के लिए अपने व्यर्थ बोल को समाप्त करके समर्थ बोल ही बोले, कम बोल बोले, तो कितनी ना आत्मा शक्तिशाली बन जाए। तो दूसरा अटेंशन रखना है बोल पर। यही मेरे बोल है जो मेरी स्थिति को ऊपर भी ले जा सकते हैं, और यही बोल है जो मेरी स्थिति को एकदम नीचे गिरा देते हैं। स्थिति नीचे गिरना माना बाबा से योग टूटना। कभी कभी हम परिस्थिति के प्रभाव में आकर, कोई आत्मा के संस्कार को देख करके हम भी रिएक्ट होके कोई ना कोई व्यर्थ या उल्टे सुलटे बोल बोल देते हैं। बोलने के बाद क्या होता है, क्या होता है, अच्छा लगता है? नहीं, तुरंत आत्मा कहती है अरे मैंने क्यों ऐसे बोल दिया। रियलाइजेशन होता है। अगर रियलाइजेशन नहीं हुआ तो भी वो जो मेरे मुख से गलत बोल निकले, सामने वाली आत्मा के दिल को दुख पहुंचा, कर्मों का हिसाब बहुत फास्ट चलेगा, उसकी स्थिति हिल गई, उनसे डबल ज्यादा मेरी स्थिति हिल जाएगी, योग मेरा टूट जाएगा। इसलिए क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम महान आत्माएं हैं, और अगर हमने अपने बोल से किसी आत्मा के दिल को दुख पहुंचाया, तो बाबा ने कहा है बच्चे अगर एक आत्मा को भी दुख दिया, योग मेरा लग नहीं सकता। तो अगर मुझे योगी आत्मा बनना है, सिर्फ योगी नहीं, ऐसा योगी आत्मा जिस योग में मुझे परमात्मा प्यार का अनुभव होता रहे, तो मुझे अपने बोल को श्रेष्ठ बनाना होगा। और बोल को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे बड़ी धारणा, जो आज सवेरे क्लास में भी बहुत अच्छी तरह से आशा बेन ने भी इन धारणा को हम सभी टीचर्स बहनों के सामने पक्का कराया, कि सबसे बड़ी धारणा की आवश्यकता है। और वो धारणा कौन सी है? आपस में हमारा प्यार भरा व्यवहार ब्राह्मणों का पहले हो जाए, क्योंकि हम वही ब्राह्मण आत्माएं हैं जिनको आधा कल्प साथ में रहना है। कितना प्यार से रहना है, तो अभी से वो प्यार हमारे एक दूसरे के बीच में आ जाए, उसके लिए सबसे बड़ा गुण हमें अपनाना पड़ेगा, और वो है क्षमा भाव। हर आत्मा को क्षमा करते जाओ। बस आज तक जिस किसी आत्मा ने मेरे साथ कैसा भी क्यों न व्यवहार किया हो, क्योंकि अब नए साल में हम सबको जाना है, तो पुराने का पूरा हमें चेक करना है। अब तक भी कोई आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है? कैसे पता चलेगा कि कोई आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है? कैसे पता चलेगा? वो आत्मा बार बार मेरे मानस पटल पर आएगी, बार बार वो आत्मा की याद आएगी। तो जिस किसी आत्मा के साथ ऐसा हिसाब किताब है, कोई ने मेरे साथ कैसा किया होगा, क्या किया होगा, पुराने साल के साथ साथ मुझे उसको चुप्त करना है। चुप्त कैसे करेंगे? क्षमा कर देना है। और हर रोज के जीवन में भी किसी आत्मा से कुछ भी होता है व्यवहार में, हम कदम कदम पर हर आत्मा को क्षमा करते चले। जब मैं क्षमा कर दूंगी तभी वो आत्मा के बारे में मैं अच्छा सोच सकूंगी, और जब मैं अच्छा सोचूंगी उस आत्मा के बारे में, तभी उसके प्रति मेरे मुख से कैसे बोल निकलेंगे? श्रेष्ठ बोल निकलेंगे। और जितने मेरे श्रेष्ठ बोल उस आत्मा के प्रति निकलेंगे, उस आत्मा को मेरे बोल से ताकत मिलेगी, उसकी स्थिति पावरफुल होगी, उसमें उमंग उत्साह आ जाएगा और वो पुण्य मेरे खाते में जमा हो जाएगा और मेरा योग यहाँ पर पावरफुल होता जाएगा, स्थिति मेरी शक्तिशाली बनती जाएगी। तो अब हमें कैसा बनना है? पक्का व्यापारी। जहां पर भी देखो बस फायदे की बात ही सोचना है। आजकल हम कहते हैं ना, दुनिया में लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि हर लोग बस अपना फायदा देखते हैं, है ना। कहते हैं ना, दुनिया में सभी अपना फायदा देखते, वो स्थूल रूप से फायदा देखते हैं। यहाँ सूक्ष्म फायदे की बात है कि मुझ आत्मा का खाता बस जमा होता जाए और यही जमा का खाता अंतिम काल में मुझे मदद करेगा, यही जमा का खाता मेरे योग को शक्तिशाली बनाएगा। इसलिए बाबा कई बार हमें कहते, बच्चे इतना जमा करो, इतना जमा करो कि अचानक इस जीवन यात्रा में कोई पास्ट के जन्म के हिसाब किताब आ भी गए, आते ना कभी कभी, 63 जन्मों के हिसाब है। अभी मैं आराम से चल रही हूँ, मुझे पता नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक पास्ट के कोई कर्मों का हिसाब बीच में आ गया तो कुछ भी हो सकता है। तो उस समय अगर मेरा जमा का खाता होगा तो वो जमा का खाता वो परीक्षा को पार करने में मुझे मदद करेगा। और अब तो वो समय चल रहा है जिसमें दुनिया वालों के साथ साथ हम ब्राह्मणों के हिसाब किताब भी बहुत ही जल्दी चुकतू हो रहे हैं और भी होने हैं। और उनके साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा थोड़े समय में ही अपनी स्थिति द्वारा अपने पद को प्रत्यक्ष करती जाएगी, स्थिति द्वारा अपने पद को प्रत्यक्ष करती जाएगी। अर्थात ऐसी परिस्थिति आएगी कि वो आत्मा अपने संस्कारों के वश होकर वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा उसका भविष्य का पद होगा। तो उस समय भी मुझ आत्मा को हर आत्मा के उस संस्कारों को देखते हुए भी अचल और अडोल रहना है। इसलिए कौन सी धारणा चाहिए? क्षमा के साथ साथ साक्षीपन। तो अब हम बाबा साक्षी बने, साथी में से साक्षी का पार्ट बाबा का शुरू हो जाए, उसके पहले हम क्या करें? हम ही ऐसे साक्षी बन जाएं कि बाबा को मेरे साथ साक्षी बनने का समय ही ना आए। तो हम हर ड्रामा के सीन को साक्षी होकर के देखें, क्योंकि वैसे भी 2018 माना क्या, 18वां अध्याय की शुरुआत नहीं कहेंगे, समाप्ति समारोह कहेंगे। 18वां अध्याय अंतिम अध्याय, संपूर्ण स्थिति। और 18वें अध्याय तक तो अर्जुन तैयार हो चुका था ना। कृष्ण ने उसको ज्ञान दे देकर, कर्म की फिलोसोफी समझा कर, अपना विराट रूप का दर्शन कराकर 18वां अध्याय तक तो अर्जुन खड़ा हो गया गांडीव लेके युद्ध करने के लिए। वो हमारी यादगार है कि अब हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। खड़ा होना माना स्थिति में खड़ा हो जाना चाहिए। तो हम ऐसी स्थिति अपनी बना दे, नए साल में हम ऐसे प्लान बनाए। कल तो प्यारे बाप दादा के सामने हम सब बैठेंगे, तो आज की रात और कल का पूरा दिन हम खुद की जीवन यात्रा को देखें और ऐसा प्लान बनाएं और बाबा की दृष्टि लेंगे कि बाबा अब इस बार मुझे यहां से बनकर के जाना है। मैं अर्जुन अभी धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके लिए सिर्फ संकल्प से काम नहीं चलेगा, कदम कदम पर मुझे अटेंशन रखना है, बाबा को अपने साथ रख करके साक्षी बन जाना है। बस बाबा हमेशा कहते, जो बच्चे साक्षीपन की सीट पर सेट रहते हैं, परिस्थितियां उस सीट के नीचे चली जाएगी, परिस्थिति उस आत्मा को हिला नहीं सकेगी। ऐसा पावरफुल आसन है साक्षीपन का। साक्षीपन की स्थिति माना, हर पल हम यही याद रखें, जो हो रहा है मेरे साथ या दूसरों के साथ वो कल्याणकारी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, न्यायकारी हो रहा है, कल पहले मुआफिक, नथिंग न्यू। बस इतना ही संकल्प आ गया ना, स्थिति हिलेगी नहीं। फिर हम पाएंगे कि बाबा हर पल हमारे साथ रहेंगे। तो यही स्थिति का हम अनुभव करें, हम सब अपने मन का ऐसा प्लान बनाएं कि अब मुझे मन को फ्री नहीं रखना है। बार बार सभी को सकास दे, हर कर्म में बाबा के साथ का अनुभव करें, बाबा को अलग अलग स्वरूप से मुझे अपने साथ रखना है। हर संगम की घड़ी मेरे लिए अनमोल घड़ी बन जाए, और साथ में अमृत वेला हमारा पावरफुल होना ही चाहिए। और जब इन बातों पर अटेंशन रखेंगे ना, तो अमृत वेला कैसा होगा, शक्तिशाली हो ही जाएगा। और जिस आत्मा का अमृत वेला शक्तिशाली, उनका पूरा दिन भी शक्तिशाली रहेगा। तो यही संकल्पों के साथ हम अपनी स्थिति को पावरफुल बना करके बाबा को नए साल की सौगात देंगे, श्रेष्ठ संकल्पों की सौगात देंगे और श्रेष्ठ स्थिति की सौगात देंगे। तो अभी हम सब यही संकल्प को प्यारे बाप दादा के सामने रखेंगे कि बाबा नया साल हमारा आपके साथ साथ बीते, हर पल आप हमारे साथ रहेंगे और हर कर्म में हम बच्चे आपको हमारे साथ रखेंगे। तो योग हमारा बिल्कुल सहज हो जाएगा, योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे कर्म की दुआ ये ही, मेरे बुद्धि के कनेक्शन को बाबा से निरंतर जुड़ाए रखेगी। ओम शांति।
ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है।
Yeah.
ठहरती है, पावनता की खुशबू मन का सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन का सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी।